हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 20। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अब अमृतमयी शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवान कहते हैं, न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य चाप्यम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य चाप्यम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य चाप्यम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य चाप्यम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य चाप्यम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। शब्दों का अर्थ न कभी नहीं, प्रहृष्येत हर्षित होता है, प्रियम प्रिय को प्राप्य प्राप्त करके, न कभी नहीं, उद्विज्येत विचलित होता है, प्राप्य प्राप्त करके, च भी अप्रियम अर्थात अप्रिय को, स्थिर बुद्धि अर्थात आत्मबुद्धि या कृष्ण चेतना, सम्मूढ़ असम्मूढ़ों का मतलब होता है मोह रहित या संशय रहित, ब्रह्मविद पर ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्म में स्थित होता है। अनुवाद, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण ये है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्मय का ब्रह्म नहीं रहता। यानी आत्म तदात्मय इसका क्या मतलब है कि जो स्वरूप शुद्ध व्यक्ति होते हैं ना, वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं, उनका पहला लक्षण क्या होता है कि शरीर और आत्म तत्व के तदात्मय, कि वो शरीर और आत्मा को एक नहीं समझता है, इसलिए ब्रह्म नहीं उसका कि शरीर ही आत्मा है। वह यह बलिबांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। यानी पहला स्टेप है, उसे अपनी पहचान, उसे पता होनी चाहिए कि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से मेरा कोई सरोकार नहीं। शरीर और आत्मा के भेद को वो अच्छी तरह से जानता है। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक करता है। अब जो कुछ भी संसार में मिलता है भौतिक शरीर से रिलेटेड होता है, तो अगर उसे प्राप्त हो जाता है तो भी वो इतना प्रसन्न नहीं होता, और अगर उसे कुछ हानि होती है, लॉस होता है, तो भी उसे इतना ज्यादा शोक नहीं होता, क्योंकि वो किस प्लेटफॉर्म पर है, आध्यात्म के प्लेटफॉर्म पर। वो अपने स्वरूप को अच्छी भांति जानता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को टुकराता है। यहाँ पर दो चीजें श्रीला प्रभुपाद ने बताई कि ये दो काम नहीं करता है, तो एक ही, लेकिन क्या है, स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त नहीं होता। वो जानता है कि यही शरीर है और शरीर वस्त्र की भांति है, मुझे इसलिए मिला है ताकि मैं इस शरीर से के द्वारा अपने वास्तविक गोल को पहुंच सकूं। वो शरीर को आत्मा नहीं मानता, बल्कि ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है और इसके द्वारा मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वो इसको जानता है। और दूसरा, और ना शरीर को स्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता, और ये भी जानता है कि ये शरीर जो है वो, अभी देखो स्थाई और अस्थाई दो होते हैं ना, स्थाई का क्या मतलब है, इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होता है, स्थाई, और अस्थाई का मतलब होता है जो समाप्त होने वाला। और शरीर को स्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता नहीं है, वो जानता है कि शरीर क्षणिक है, समाप्त हो जाने वाला है और आत्मा इटर्नल है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। अब वो क्योंकि तत्वदर्शी होता है तो भगवान के परम सत्य के विषय में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को अच्छी तरह से जानता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। वो जानता है कि मेरा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मेरा स्वरूप दास का है, और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी भी यत्न नहीं करता। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं भी भगवान बन जाऊंगा, या मैं भी भगवान हो जाऊंगा और भगवान के अंदर मिल जाऊंगा, ऐसा नहीं कभी भी सोचता। उसे पता है कि मेरा एक इंडिविजुअल अस्तित्व है, वो सदैव बना रहेगा। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। श्री प्रभुपाद जी ने बताया, ये जो स्थिर बुद्धि होती है ना, जिसमें हम अपने अस्तित्व को जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा काम क्या है, भगवान की सेवा करना, हमारा स्वरूप है कृष्ण का दास होना, और हमें इस संसार में रहें या फिर मुक्त हो जाएं, तभी तक हमें अपना यही कार्य करना है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने समस्त समय को यूज करना है। तो ये जो बुद्धि होती है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, और ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है, और इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। श्रील प्रभुपाद की इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथ वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु व्येव च प्रतीतनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद्भगवद गीता मात्र की जय हो। जब तक जीव को भौतिक ये ज्ञान रहेगा भौतिक स्टेज तक होगा ना जीव तब तक उसकी जीवन की समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। अज्ञानता ही हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर अज्ञानता के कारण दुख मिलता है तो इसका मतलब है हमारे सुख का कारण क्या बनेगा ज्ञान। तो उसी ज्ञान के विषय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को जान लेता है तो उसका क्या फायदा हासिल होता है। श्लोक नंबर 16 में भगवान ने बताया था ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मना तेषाम् आदित्यवैज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है। और उसके बाद भगवान ने बहुत ही खास बात बताई है 17 में। भगवान ने कहा ज्ञान आपको खाली बुद्धि से नहीं लेना है बल्कि चार चीजें उसके अंदर लगानी है। क्या? तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्यपुनरावृत्तम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। कि आपकी बुद्धि आपका मन आपकी निष्ठा ये तीनों चीजें ज्ञान में लगेंगी और आपका गोल भी वही होना चाहिए तत्परायण। आप उसी ज्ञान के परायण हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम फिर आपकी पुनरावृत्ति समाप्त हो जाएगी। बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। और दूसरा जो आपके जितने भी कलमश हैं ज्ञान अनिर्धूत कलमश आपके समस्त कलमश भी नाश हो जाएंगे। और उसके बाद भगवान ने श्लोक नंबर 18 से जो ज्ञानी होते हैं विद्यावान होते हैं उनके लक्षण बताना शुरू किए हैं कि वो दिखते कैसे मतलब वो कार्य किस तरह से करते हैं। अत्यंत ही सुंदर और प्रसिद्ध श्लोक श्लोक नंबर 18 विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुणिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। कि जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं उनके अंदर इतना ज्ञान होता है कि उस ज्ञान के कारण वो एक विद्वान ब्राह्मण और एक गाय, एक हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। और कल हमने पढ़ा श्लोक नंबर 19 में सर्गो, और इस तरह से इसी संसार में तैर जितह सर्गो, वो इस संसार में ही जन्म मरण से के चक्कर से जीत जाता है, बच जाता है। कौन? ये शाम साम्ये स्थित मना, जिनका मन एकत्व में स्थित होता है। और वो कैसा होता है? निर्दोषम, क्योंकि ज्ञान ने पहले बताया था ना हम लोगों ने श्लोक नंबर निर्दूत कल्मशः, किसने पढ़ा था? 17 में। क्योंकि ज्ञान होगा तो आपके अपराध समाप्त हो जाएंगे, और आप जब ये सारी चीजें बुद्धि मन निष्ठा और ज्ञान की शरण में चले जाओगे तो आपके समस्त अपराध, क्योंकि जब ये सारी चीजें ज्ञान के अंदर लगेंगी ना, फिर आप ज्ञान को ऑब्जर्व करोगे, फिर हर चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। और फिर क्या, आप कैसे बन जाओगे? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, आप ब्रह्म के समान ही निर्दोष हो जाओगे, जिस तरह भगवान निर्दोष होता है। तस्मात् ब्रह्मेति स्थितः, और सदा ब्रह्म में ही स्थित हो जाओगे। और जब इस तरह स्थित हो जाओगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो आज भगवान बता रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर ढंग से भगवान कह रहे हैं, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य। प्रहृष्येत का मतलब होता है बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं ना, जो बहुत हर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं न प्रहृष्येत, वो खुश नहीं होते। प्रियं जब उन्हें प्राप्त होता है, प्रिय प्रियम प्राप्य मतलब बहुत अच्छा लगता है, जो आपको बहुत पसंद लगता है। और यानी कि अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगे कि ये कितना अच्छा उसको मिला है, लेकिन फिर भी न प्रहृष्येत, उसे प्राप्त करने के बाद भी वो जो ज्ञानी होता है, जो ब्रह्म में स्थित होता है, जो ज्ञान जिसने अर्जित किया होता है, वो इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। नो द्विजेत प्राप्य, द्विजेत का मतलब होता है विचलित नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। कब? प्राप्य चा प्रियम, जब प्रिय जो चीज नहीं होती है, जो एक्सेप्टेशन के मुताबिक नहीं होती है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सर्कमटेंसेस जब उसके सामने क्रिएट होता है तो वो विचलित नहीं होता। क्यों? स्थिर बुद्धि, क्योंकि उसकी बुद्धि एकदम स्थिर होती है। किस में? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ना, तस्मात् ब्रह्मणि तेजसिता, वो उसकी बुद्धि जो है वो ब्रह्म में स्थित होती है, भगवान के अंदर उसका चित्त होता है। तो क्या होता है? स्थिर बुद्धि असमूढ़ो। असमूढ़ो का क्या मतलब होता है? उसको कोई मोह नहीं रहता, उसको कोई संशय नहीं रहता। और ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्मवेद यानी परब्रह्म को जानने वाला, क्योंकि वो जानता है कि भगवान जो है वो ही मेरी समस्त ये जो सिचुएशन है वो उनके प्लान से क्रिएट हुई है ना। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो भगवान की इच्छा से प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, तो वो ब्रह्म में स्थित होता है। इसलिए अगर उसको कोई पसंद की चीज मिल जाती है तो भी वो खुश नहीं होता, और अगर कुछ अप्रिय प्राप्त हो जाता है तो वो विचलित नहीं होता। वास्तव में भक्तों, भगवान हमें समत्व ही सिखा रहे हैं कि क्योंकि आप इस भौतिक शरीर से कुछ रिलेशन नहीं रखते हो, आप आत्मा हो, और ये जो सुख दुख प्रिय अप्रिय और हर्ष और शोक जो प्राप्त हो रहा है आपको, जैसे हमने कल डुअलिटी के विषय में पढ़ा, वो सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि यह शरीर आपको प्राप्त है और यह सब कुछ जो है वो इस शरीर से रिलेटेड है। भगवान ये न कहना प्रकार हमें हमारे अस्तित्व, हमारी वास्तविक पहचान कराना चाहते हैं। हमें पता होना एक अलग बात है कि हमें पता चल गया है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, लेकिन तो फिर क्या हमें प्रिय जब प्राप्त होता है तो हमें खुशी नहीं होती, जब अप्रिय प्राप्त होता है तो क्या दुख नहीं होता? लेकिन भगवान कहते हैं कि जब आप वाकई में स्थिर बुद्धि हो जाते हो, फिर ये सब ड्वेलिटी खत्म हो जाती है, ये सब द्वंद्व जो है उससे आप मुक्त हो जाते हो। अच्छा बुरा जो कुछ भी मिलता है, तब जो स्थिर बुद्धि वाला होता है ना, वो क्या सोचता है कि ये सब भगवान की कृपा है। जो बुरा भी अगर उसके साथ होता है तो भी वो यही सोचता है कि मैंने तो इतने अपराध किए हैं कि ये तो बहुत कुछ भी नहीं है, भगवान को तो बल्कि मुझे बहुत ज्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन जो मुझे दिया है वो तो बहुत ज्यादा करुणा है मेरे कृष्ण की, ये तो कर्म है मेरे मालिक, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। तो ये ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए संभव नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें अच्छा 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 प्राप्त हो और हमें कोई खुशी भी ना हो, और अगर दुखी अवस्था क्रिएट हो तो हमें दुख भी ना हो, ऐसा हो सकता है? हम अगर अपना इतिहास खोल के देखें तो हमें पता चलेगा कि कितने कितने हमारे पास दृष्टांत हैं जिनके जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि किसी को अगर बहुत सुख मिला और उसे बिल्कुल भी उससे हर्षित नहीं हुआ, और इतना बड़ा सबसे बड़ी जो है ना ज्वलन प्रमाण है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के अवतार भले, लेकिन फिर भी वो इस संसार में मानव लीला कर रहे थे, वो हमें सिखा रहे हैं कि एक मानव को किस तरह से संतुष्ट रहना होता है, चाहे उसको जो प्राप्त हो रहा है वो प्रिय हो या अप्रिय, उसे एकदम समता इक्विमिनिटी में स्थित रहना है और उसको इसे विचलित नहीं होना है। कथा तो आप सब जानते हैं कि जब श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, सारी प्रजा एक दिन पहले महाराज दशरथ को कोई ऐसा मतलब अभी तक हुआ नहीं था, लेकिन महाराज दशरथ हृदय से विचलित थे बहुत, और कहने लगे राम मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ। तो राम ने कहा पिताश्री इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आप हैं, हम आपके राज्य में रहना चाहते हैं, और अभी तो मैं छोटा हूँ, मैं अभी तो आनंद लेना चाहता हूँ आपके राज्य का। तो महाराज दशरथ ने कहा नहीं राम अब तुम हट मत करो, मैं अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ और तुम्हें राज्य देना चाहता हूँ। तब श्री राम ने कहा लेकिन पिताजी भरत और शत्रुघ्न भी तो ननिहाल गए हैं, वो भली आ जाए उसके बाद। तो फिर तब महाराज दशरथ ने कहा देखो राम मेरा हृदय बहुत विचलित है, मैं चाहता हूँ कि हम उनका इंतजार ना करें और पहले ही मैं तुम्हें राज्य दे देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो कल ही हम ऐसा करें। तो श्री राम ने कहा पिताजी यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मतलब इतना बड़ा राज्य मिलने वाला था, लेकिन कोई हर्ष मतलब उन्होंने एक्सेप्ट तो किया लेकिन उस हर्ष का प्रदर्शन कुछ नहीं किया, उन्होंने जो कुछ उन्हें प्राप्त होने वाला था वो भावी था, और एक तरह से देखा जाए तो ये है ना मतलब यकीन ही था, पता था कि ऐसा ही होने वाला है, और सारी प्रजा सबको श्री राम से प्यार करते थे, इवन केकई और है ना जो केकई थी वो तो कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती थी श्री राम से, और आज वो घटना घट रही है जो कि किसी को भी जिसका अनुमान नहीं है, क्योंकि राज्याभिषेक होगा श्री राम का वो तो पूरे अयोध्या को पता था। तो अब ऐसा हो रहा है तो चलो ठीक है, उसमें सम रहना एक बात समझ में आती है, लेकिन उसी रात को एक ऐसी दुर्घटना घटी जब वाल्मीकि जी इस प्रसंग को लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो कलम इस प्रसंग को लिखना ही नहीं जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी बात थी जिसका कोई अनुमान नहीं। केकई चली गई और उस रूम में कोक भवन में, और वहां पर महाराजा दशरथ को बुलाकर जब महाराजा दशरथ ने उनकी यहाँ अवस्था देखी तो बहुत ज्यादा डरी, क्योंकि केकई ने आभूषण उतार दिए थे और वस्त्र भी ऐसे पहने हुए थे जैसे कोप भवन कहते हैं ना, बहुत ही गुस्से में क्रोध में बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोले पहले मुझसे वचन करो कि जो मुझे मैं बोलूंगी वो आप मुझे दोगे। तो बोला ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन बोला नहीं वचन दो तुम, श्री राम की कसम खाओ। बोला हाँ ठीक है, मैं राम की कसम खाता हूँ तुम्हें जो चाहिए दूंगा, तुम सही तो हो जाओ, क्या सही बताओ। तो फिर तब कैकेयी ने वो दो वर मांगे जो देव असुर संग्राम के समय महाराजा दशरथ ने उनको दिए थे, और कैकेयी ने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में आपसे मांगूंगी। लेकिन उस समय जब महाराजा दशरथ ने सुना कि कैकेयी को मुझे ये दो वर देने हैं, तब उनके हृदय को जैसे किसी ने छलनी कर दिया। बोला कैकेयी तुम मेरे प्राण ले लो, पर ये वचन मैं नहीं दे सकता, तुम वापस से तुम बोलो मजाक कर रही हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे बोल रहे हो, आप तो कितना राम से प्रेम करती हो। फिर भी कैकेयी ने कहा महाराजा तुम क्या समझते थे कि मैं कैकेयी इतने बड़े राजा की बेटी और इतने बड़े राजा की पत्नी, क्या मैं वरों में तुमसे कोई है ना कोई साधारण वस्तु मांगूंगी, मुझे मेरे बेटे भरत के लिए राज्य चाहिए और तुम्हारे बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास। तब महाराजा दशरथ ने कहा ऐसा करो, भले तुम भरत को राजा बना दो, लेकिन राम को वनवास मत दो, उसके बगैर रहना संभव नहीं होगा मेरे लिए। तब कैकेयी ने कहा नहीं, देने हैं तो मुझे दोनों वर दो। महाराजा दशरथ इतने निढाल हो गए गम से कि वो बात नहीं कर पाए। श्री राम को जब पता चला कि पिताश्री दुखी हैं, क्या किसी ने बताया, उनको बुलाया गया और श्री राम ने जब आके देखा, तब पिताश्री को देखकर श्री राम बहुत दुखी, उनको बहुत दुख हो रहा था कि पिताजी की ऐसी हालत क्यों है। तब बोला पिताजी मुझे बताइए क्या हुआ है ऐसा, मुझे लग रहा है मुझसे कोई अपराध हो गया है, मैंने कोई ऐसा अपराध कर दिया है कि आप मेरी ओर निहारना नहीं चाहते। लेकिन दशरथ महाराज कोई आंसर नहीं दे रहे थे। तब कैकेयी ने कहा कि हाँ मैं भी इसे कह रही हूँ, मैं भी इनको यही बोल रही हूँ कि कौन सी आफत आ गई है, बता दीजिए राम को, राम आपकी अवश्य बात मानेंगे। तब श्री राम ने माता कैकेयी से कहा माते आप तो पिताजी के साथ ही थी, आप ही बता दीजिए अगर आपको पता है कि मेरे पिताजी की इस हालत का क्या कारण है। तब कैकेयी ने सारी बात श्री राम को बताई और कहा बस इतना ही कारण है और इसी की वजह से आपके पिताजी को इतना दुख मिला। तब श्री राम ने कहा बस इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी की ये हालत है, मुझे दुख हो रहा है इस बात के लिए नहीं कि मुझे वनवास मिल रहा है, बल्कि इस बात के लिए मुझे दुख हो रहा है कि मेरे पिताजी को मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं उनकी इतनी छोटी सी बात पूरी करूंगा। अरे वो एक बार मुझे एक लफ्ज बोल देते कि राम तुम्हें वनवास जाना है, मैं उसी समय निकल जाता, और मुझे दुखित हो रहा है कि मेरे पिताजी को अपनी संतान के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं उनकी बात मानूंगा। तब कैकेयी ने कहा हाँ ना, मैं भी तो इनको कभी से समझा रही हूँ कि राम तुम्हारी बात अवश्य मानेगा, ये पता नहीं क्यों दुखी हो रहे हैं। तब श्री राम ने कहा कि मुझे फिर भी उनके मुख से सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने जो बोला है मेरे लिए वही पिता के वाक्य है और मैं अभी इसी समय वनवास के लिए चला जाऊंगा। वास्तव में भक्तों, अगर आज की संतान, उसको अगर कोई पिता ये ना प्रॉमिस करे कि बेटा अगर तुम इस सफा पेपर्स में फर्स्ट पोजीशन लाई तो फिर मैं तुम्हें बाइक लेकर दूंगा, और उस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन भी लेकर आया, लेकिन फिर अगर एक दिन भी रह जाता है ना, अगर वो नहीं बोलता, नहीं, अगर पिताजी बोले कि नहीं तुम्हें नहीं लेकर दूंगा मैं बाइक, बल्कि तुम्हारे दूसरे बाइक को लेकर दूंगा और तुमसे तुम मोबाइल फोन भी ले लूंगा, तो उस समय उस बच्चे की क्या कंडीशन होगी। लेकिन उस समय श्री राम के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि उनको वनवास दिया जाए, कोई ऐसी पूरा राज्य सब सारी प्रजा समस्त लोग, इवन महाराजा दशरथ भी उनसे इतना प्यार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बेटा तुम एक बार मेरे आदेश को मत पूरा करो, ये बार मतलब हर कोई पिता क्या चाहता है कि बच्चा मेरे आदेश को पूरा करे, लेकिन महाराज दशरथ श्री राम से कह रहे हैं कि नहीं बेटा मेरे आदेश को पूरा मत करो। लेकिन श्री राम इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि उन्होंने एक बार जब कह दिया कि मैं वनवास जाऊंगा, फिर कोई भी संसार की ताकत उन्हें इस अपने इस निर्णय से हटा नहीं सकी। और उन्होंने जिस एकदम संतुष्टि के साथ जिस तरह राज्य पद को स्वीकार किया था, उसी प्रकार वनवास को स्वीकार किया, वनवास वो भी पूरे 14 साल के लिए। और उसके बाद है ना लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को तो इतना क्रोध आया, बोला ये जो दशरथ जिसको हम पिताजी कहते हैं वो उस औरत के कहने के कारण वो इतना गलत काम कर रहा है, वो जान भी रहा है कि ये सब है ना मंत्र। अब देखिए केकई जो है वो वास्तव में अच्छी थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने वाली मंथरा थी। यानी कि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो बुराई होती है उसका सिर्फ संग करने से हम कितने बुरे हो सकते हैं, कि संसार में आज भी कोई भी केकई अपना कोई भी माँ अपना नाम केकई नहीं रखेगी, बोलेगी नहीं इसका नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में उसके अंदर बुराई नहीं थी, बल्कि उसने क्या किया था, बुराई के साथ संग किया था। अब हम चाहे खुद कितने भी अच्छे हों, लेकिन यदि हम बुराई का संग करते हैं, अपराधी का संग करते हैं, ऐसे जिसकी बुद्धि को बुद्धि होती है उसका संग करते हैं, तो हम डेफिनेटली गलत कार्य करेंगे। अच्छाई के साथ अच्छाई और बुराई के साथ बुराई, हो सकता है कभी ऐसा कि आप भक्त के साथ रहकर भक्त ना बनो, अगर आप आपकी इच्छा नहीं है तो आप भक्त नहीं बनते हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम भक्तों के घर में रहते फिर भी क्योंकि हमारा हृदय मिलता नहीं है तो फिर हम ना भक्त नहीं बन सकते। भले मतलब भक्तों के साथ रहकर जो कि भक्ति जो है उसको अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं, लेकिन बुराई अपनी ओर इतना आकर्षित करती है कि बुरे व्यक्ति के साथ रहकर आपको बुराई अट्रैक्ट करेगी करेगी 100%। वही बात आती है उसके धृतराष्ट्र के, वो धृतराष्ट्र बुरा नहीं था, ज्ञानी था, वो जानता था, उसको पता भी था कि ना मैं इस लाइक नहीं हूँ कि मुझे राज्य, लेकिन क्योंकि वो दुर्योधन की संगति में था इसलिए, क्योंकि उसने अपने पुत्र की संग पुत्र का संग किया था जो कुबुद्धि था, इसलिए उसने इतना सारा अनर्थ हो गया उसके राज्य में। तब लक्ष्मण ने कहा कि हम युद्ध करेंगे राजा के साथ, वो इस तरह से कर रहा है, हमारा कोई अपराध नहीं है, किसी भी व्यक्ति को हम बगैर किसी अपराध के इतना बड़ा दंड नहीं दे सकते, आपको राज्य देने का प्रॉमिस किया उसने और आपको वनवास दे रहा, आप छुप करके चल रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, हम युद्ध करेंगे। कृष्ण तब श्री राम ने कहा लक्ष्मण चुप रहो, पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, वो पिता है हमारे, जाके देखो तो सही उसकी क्या हालत है, उन्होंने तो अपने मुख से मुझे वनवास में जाने के लिए भी नहीं कहा है। तो फिर लक्ष्मण ने कहा ये सारी कारीगरी उस केकई की है, तो श्री राम ने कहा माता है वो हमारी, उनको अधिकार है हमारे जीवन का निर्णय लेने के लिए, अगर उन्होंने मुझे दिया है ना, मुझे वनवास दिया, मैं जा रहा हूँ, तुमको क्या है, तुम चुप करके बैठो, और अगर इस तरह से माता पिता के विषय में बात करोगे तो कभी भी मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। तब लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, मैं आपकी परछाई हूँ, मैं आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैंने ऐसा कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे इस अपराध को आप क्षमा करके मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तब श्री राम लक्ष्मण को भी अपने साथ लेकर गए और सीता मैया ने भी अनुरोध किया कि मैं स्वामी आपके बगैर नहीं रह सकूंगी, तो सीता मैया भी उनके साथ गई और वहां जंगल में वनवास में उसी टाइम पर उन्होंने वनवास का वस्त्र धारण किया, सारा राज्य वैभव वहीं पर एक सेकंड में त्यागा, उनके हृदय में कोई संताप नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, एकदम जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं न प्रहे क्षेत्रियम प्राप्य नो द्विजे प्राप्य चाप्य। और उसी उसके बाद 14 साल तक उन्होंने वनवास भोगा और वनवास के बाद जब वो आए तो भरत ने उनको राज्य वापस लौटा दिया। हम सब जानते हैं कि भरत ने भी राज्य नहीं भोगा और भगवान की जो सैंडल्स थे कुछ पादुका है, वो पादुका है, उन्होंने राज भोगा था। और स्वयं भरत भी अयोध्या से 4-5 माइल के दूर नंदीग्राम में जाकर रहते थे, वो भी बल्कि फर्श से भी नीचे के फर्श पे तो मेरे प्रभु श्री राम है, और वहां पर खड्डा खोद के वहां पर रहते थे। तो फिर जब श्री राम आए इतने समय के बाद, और 14 साल तक बन बन भटकना, उनकी स्त्री खो गई थी, उसके लिए इतना प्रयत्न करना और रावण के साथ युद्ध करना, मतलब उनके पांव छलनी हो गए होंगे, इतना टाइम 14 साल कितना बड़ा टाइम पीरियड होता है। और वन में ना उन्होंने मतलब शूज भी नहीं पहने थे, और धूप गर्मी सर्दी कंटिन्यूस उन्होंने बर्दाश्त की, और आते ही उनको इतना सारा वैभव, अयोध्या का राज्य उनको मिल रहा था। जैसे अगर कोई भूखा हो बहुत सारे दिनों का, 2-3 दिन का भूखा हो, उसके सामने जब खाना आता है तो वो कैसे, अगर उसके सामने 56 भोजन रहते थे तो वो कैसे अपने आपे में नहीं रहेगा और वो खाना शुरू कर देगा। लेकिन श्री राम एकदम समता, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको इतना बड़ा, बस ठीक है, क्योंकि उन्होंने भरत से ये वचन किया था कि मैं आऊंगा और फिर से राज्य लूंगा, तब तक आप संभालो। और आते ही भरत ने कहा, लो श्री राम भैया अपना राज्य संभालो, अब मैंने बहुत सारी ड्यूटी कर ली, अब आप अपना खुद ही संभालो। तो उस समय न प्रहृषित प्रियम प्राप्य, इतना सब सुंदर प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी श्री राम के मुख में वो जो उल्लास है, फूंकता है, कोई कोई होता है ना कि खुशी मिलती है उसको तो वो अनबियरेबल होता है। श्री प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुना देते, वो कहते थे कि एक जैसे एक नौकर था, उसका एक है ना एक बिजनेसमैन था, उसके यहाँ पर एक सर्वेंट होता था। तो वो जो ऑनर है वो हमेशा लॉटरी खरीदता था। तो एक बार उसने अपने सर्वेंट को बोला कि देखो लॉटरी अगर लग जाए तो अनावारे नारे हो जाते हैं, तो तुम ऐसा करो तुम भी क्यों नहीं लॉटरी ले लेते। तो बोला मेरी कभी लॉटरी लगेगी क्या, वो धन जो है ना वो धन की ओर आकर्षित होता है। बोले ले लो क्या फर्क पड़ता है, लेकर देख लो अपने ना किस्मत को आजमा लो। तो बोला ठीक है। तो उस समय लॉटरी जो है उसका इनाम था 10 लाख रुपए। तो वो इतना मतलब जब है ना रिजल्ट आउट हुआ तो जब चेक किया, दोनों चेक कर रहे थे, मालिक भी और नौकर भी चेक कर रहे थे, तो मालिक का लगा नहीं, लॉटरी लगा नहीं, और है ना नौकर का लग गया। अभी तक है ना चेक कर रहे थे, जैसे मालिक ने देखा नौकर का लगा है तो मालिक के हाथ में ग्लास था शीशे का, उसको इसे जोर से दबाया, मतलब उसको इतना गुस्सा आया कि अनबियरेबल, वो क्रोध उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे, तो ग्लास पूरा टूट गया। और जो नौकर था उसको बताया तुम्हारा लग गया 10 लाख का, उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। यानी कि वो अपने गुस्से को काबू, दुख को काबू नहीं कर पा रहा था, और उसने अपनी खुशी को भी काबू नहीं कर पाया। तो ये इस संसार में सुख और दुख जो भौतिक शरीर से रिलेटेड है उनको कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ केवल श्री राम ही नहीं, और भी शास्त्रों में अनेकों ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं। जैसे वामन देव जब आए तो महाराज बलि, उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें बताया था कि ये जो आए हैं वो साक्षात विष्णु हैं, वो तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, आप इनको दान मत दो। लेकिन तब वामन देव ने कहा, वामन देव के विषय में उन्होंने महाराज बलि ने कहा, अगर ये वाकई में भगवान है और मुझसे लेने आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, मैं उसे सब कुछ। तो जितना राज्य था अभी वो उनके पास पूरा इतना सारा राज्य था, वो यज्ञ कर रहे थे और भगवान वामन ने 2 ही पग में उनका सारा कुछ राज्य ले लिया, और उसके बाद उनके सर पे पांव रखा उसको भी ले लिया, है ना, कुछ भी उसके पास नहीं बचा। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थे क्योंकि वो सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे और भगवान ने स्वयं उनका द्वारपाल बनना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं, हमें वो स्टोरी इतिहास में सत्य, ये सब सत्य घटनाएं हैं कि किस तरह से कोई इस श्लोक पर पूरा उतरता है, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य साप्य। तो जैसे हम महाराजा भरत के विषय में पढ़ते हैं, महाराजा भरत जो कि एक छत्र राजा थे, इतना इतना सारा राज्य उनका, इतना वैभव, और वो जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, और जब वो हिरण के पीछे आसक्त हो गए और फिर हिरण बने, तब उन्हें याद रहा था कि पिछले जन्म में मैं आसक्ति के कारण हिरण बन गया हूँ, इसीलिए वो अब वो किसी चीज में आसक्ति नहीं रख रहे थे। और उसके बाद उनको दूसरा जन्म मिला जड़ भरत का। जड़ भरत के रूप में उन ये जो जड़ भरत का जो जीवन है वो पूरा का पूरा श्लोक पे है ना डिपेंडेंट करता, कि उसको जो भी मिलता था, उसके भाई थे और उसको एकदम जानवर की तरह ट्रीट करते थे। सारा जो मुश्किल काम होता था, भोजन उठाने का, खेत में कार्य करने का, वो सब उससे कराते थे। और दूसरा उसको खाने के लिए भी देते क्या थे, जो भी है ना खाना बनाते थे, जो जैसे जल जाता था या खराब कच्चा होता था वो उसको खिला देते, वो सब एकदम इक्विमिटी के साथ। कुछ भी समता जो उसे प्राप्त हो रहा था, ये नहीं सोचता था कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो बिल्कुल जड़ की तरह जड़वत व्यवहार करते थे। और जो भी उन्हें प्राप्त होता था उसमें प्रसन्न, अगर खराब कभी अच्छा खाने को मिल जाता था तो भी संतुष्ट, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते। और ऐसा भी नहीं कि जब उसको कभी जला हुआ मिलता था या कच्चा मिलता था तभी भी वो असंतुष्ट नहीं होते थे वो, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर थे। ये वास्तव में बताने का यह है अभिप्राय कि जब हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो फिर हमें भौतिक कष्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं लगते। वास्तव में भक्तों, हम अभी तक भौतिक धरातल पर हैं और हमें ये सब दुख सुख रियलाइज होते हैं, लेकिन जितना जितना हम भगवान के साथ अपने प्रेम को निर्माण करेंगे, ये क्यों होता है, क्योंकि फिर उसे पता चल जाएगा कि मेरी संतुष्टि केवल कृष्ण प्राप्ति में है। फिर जैसे मीरा को कोई जहर भी देता है तो भी वो क्या सोचती है कि मेरी कृष्ण की कृपा है, ये कृष्ण की कृपा है तभी मुझे प्राप्त हो रहा है। तो भले उसको कोई कुछ भी कर रहा होता है, जो भक्त होता है जैसे हरदास ठाकुर के विषय में हम जानते हैं, उसको 22 बाजारों में कोड़े मारे गए, कोड़े मारे जा रहे हैं, और उसका कारण क्या है, केवल एक ही कारण है कि वो भगवान के नाम का जप कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि मेरे शरीर से आप अगर खून की एक एक बूंद भी निकाल दो, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो, फिर भी मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। यानी कि वो भगवान के साथ इतना लीन होता है भक्त, और उसको फिर कष्ट नहीं लगता। इस संसार में उसे कुछ भी प्राप्त होता है तो उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कष्ट है, दुख है या सुख है। उसको इम्पोर्टेंस जिस चीज को हम देते हैं ना, तो वही चीज हम लोगों को फील होती है। लेकिन क्योंकि वो जो ज्ञानी होते हैं वो इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, केवल भगवान की संतुष्टि को। तो जब ऐसे भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो भगवान को कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये भी आश्लिष्य वादरताम पिनष्टु माम अदर्शनम मर्म हताम करो तो वा यथा तथा वा विद्धा तुलम पटो मत प्राण नाथस्तु समय प्रिय एवं नाप्रह। तो वास्तव में भगवान को जो अच्छा लगता है, भगवान तुम्हें जो अच्छा लगता है मेरे लिए वही करो, मुझे कुछ भी और जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें इक्वल रहना, ये भक्त की निशानी। और ये भक्त ऐसा क्यों करता है, अच्छा कभी ये मन में भी आता है कि चलो ठीक है हम भक्त तो बन जाए, लेकिन ये कैसे अपने अंदर ना गुण लाए कि हम अच्छा प्रिय प्राप्त होने पर सुखी ही ना हो और अप्रिय प्राप्त होने पर दुखी ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो भक्ति एक समझ में आती है, लेकिन ये अपने अंदर किस लिए लाना है, वो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं श्लोक चैप्टर नंबर 12 में, 12.17। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। और इसमें भगवान कहते हैं यो न विष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्याखी भक्तिमान्यः समीप्रियः। यो न हर्षति अर्थात न जो कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि न ही शोक करता है, न शोचति न ही पछताता है, न कांक्षति और न ही इच्छा करता है। शुभा शुभ परित्यागे, शुभ अर्थात जो अच्छा होता है, अशुभ यानी बुरा, दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग, बिल्कुल त्याग देता है। भक्तिमान्यः समेप्रियः, और वो भक्ति में स्थित हो जाता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो क्योंकि हमें भगवान का प्रिय बनना है, तो हमें एकत्व में आना है, समता में आना है। और ज्यादा से ज्यादा भौतिक चीजों को, जिस जिस चीज को हम ज्यादा वैल्यू देंगे, वही, क्योंकि ये सब आसक्ति की तो निशानी है। जिस चीज में ज्यादा आसक्ति होती है, वो प्राप्त होने पर सुख प्राप्त अनुभव होता है। और जिस चीज में हमें घृणा आती है, मतलब जो पसंद नहीं लगती है, वो चीज प्राप्त होती है तो दुख होता है। लेकिन भगवान कहते हैं, ना किसी में आसक्ति रखो और ना ही किसी से घृणा रखो, क्योंकि तुम्हारा संबंध केवल मेरे साथ है। तुम वास्तव में ही शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम्हारा संबंध मेरे साथ है। तो मेरे साथ अपने संबंध को निर्माण करो, और भौतिक वस्तुओं, शुभ अशुभ, प्राप्त जो भी प्रिय है और अप्रिय है, उनकी प्राप्ति में ना तो ज्यादा हर्षित हो और ना ही ज्यादा दुख महसूस करो जब वो प्राप्त खराब प्राप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छी सेवा करके गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। हरि बोल।